تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 182 سے 182. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بے شک جن لوگوں نے اور اس کے برعکس, یعنی پیچھے سے اصل میں سلسلہ چل رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک گروہ کے حق پر رہنے کی بات کی تھی کہ جتنا مرضی بگاڑ دنیا میں آ جائے لیکن ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا, اور اس کے برعکس رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم ان کو بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. اور یہ کیا ہے, وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں. بہت ہی زیادہ فکر میں ڈال دینے والی آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ دکھ رہا ہے ان آیات میں, اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا طریقہ سمجھ آتا ہے کہ جب لوگ جانتے بوجھتے حق کو ماننے کے باوجود نہیں قبول کرتے. کذبوا کا لفظ ہم پیچھے کئی دفعہ دیکھ چکے کہ کافر کے لیے نہیں آتا. کافر اگر یہ لفظ ہوتا والذین کفروا بآیاتنا تو ہم کہہ سکتے کہ اس آیت میں دھمکی ہے نان مسلمز کے لیے جو ڈینائی کرتے ہیں ٹروتھ کو, حق کو. لیکن یہاں کذبوا کا لفظ ہے اور ڈینائی کون کرتا ہے, مسلمان کرتا ہے. کہتا خود کو مسلمان ہے لیکن اس کی عملی زندگی میں اس اسلام کا کوئی اثر نہیں دکھتا. قول سے, رویے سے, معاملے سے لوگ جب نہ مانے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے پکڑتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ ایک ٹائٹل اس آیت کا بنا لیجئے کہ گناہ گاروں کو اللہ کیسے پکڑتا ہے. پہلے ہم اپنے اوپر لیں, اگر ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم کیا کرتے ہیں, جھٹ اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں, تھپڑ ماریں گے. ماں کو لے لیجئے, بچہ اس کی بات نہ مارے تو مانے تو بعض دفعہ ماں کیا کرتی ہے, کان مروڑتی ہے, کبھی تھپڑ مارتی ہے, کبھی چیختی ہے. اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتا, بلکہ گناہگاروں کو, مجرموں کو پکڑنے کی اللہ کی سنت کیا ہے, سنستدریجہم, ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں. اس لفظ کو پیچھے ہم کر چکے ہیں, سورۃ الانعام میں بھی آیا, سورۃ پیچھے دو تین دفعہ گزرا. دال, رو, جیم اس کا روٹ ہے. درجہ اردو میں بولتے ہیں درجہ بندی, تدریج کا لفظ بولتے ہیں, یہ وہی ہے. درجہ عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں, یعنی لیڈر کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو آہستہ آہستہ پکڑتا ہوں. کیسے؟ من حیث لا یعلمون, جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہیں. سورۃ الانعام میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ فلم ما نسو ما ذکرو بھی, بس جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو پھر ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں. یہاں بالکل اسی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو قانون امحال کہتے ہیں. امحال مہلت سے, جو دو چشمی ہاں ہوتی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کو مہلت دیتا ہے. اور ہوتا کہ شروع میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی چوٹ جو پڑتی ہے نا, ضمیر کی پڑتی ہے, جس کو ہم سب کانشیس کہتے ہیں. اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے. ابھی کسی کو نہیں پتا ہوتا لیکن سب سے پہلے ہمیں خود پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بار بار غلط کام کرنے سے ہمارا ضمیر ہم سے ناراض ہو جائے, سو جائے یا مر جائے, پھر وہ نفس لوامہ نہیں بنتا. وہ پھر کہتا ہے جو کرتے ہو بھاڑ میں جاؤ, میں تو تمہیں بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں, تم میری بات نہیں مانتے, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اس کے علاوہ فطرت کے اعتبار سے انسان کا نفس اس کو اس کی برائی پہ ٹوکتا ہے. آپ ازما کے دیکھ لیں, رات کے اندھیرے میں چھپ کے آپ کسی دوسرے سے کوئی چیز غلط دیکھیں, کوئی چیز سنیں, کچھ لکھیں, کچھ بولیں, سب سے پہلے جس ہستی کو پتہ چلتا ہے نا, اللہ کو تو پہلے ہی پتہ تھا آپ کے کرنے سے, سب سے پہلے مخلوق میں جس کو پتہ چلتا ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں. یہ چوٹ ہوتی ہے, پھر اس کے اندر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, نہیں کرنا چاہیے, یہ تھوڑی دیر کی چیز ہوتی ہے, یہ پہلا درجہ ہوتا ہے. جو لوگ اپنے نفس کی ملامت کو سن کے گناہ سے ہٹ جاتے ہیں نا, تو پھر ان کو دوسرا نہیں کو پکڑتا. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے قانون کی زبان میں جب کوئی قانون توڑنے والا خود گلٹی فیل کر لے تو پولیس پھر اس کی سزا کم کر دیتی ہے, پھر ہر ایک کو کورٹ میں نہیں لے جاتے. جیسے آپ کھڑے تھے, آپ کی گاڑی کو آ کے کسی دوسرے نے ٹکر لگا دی, तो क्या कहते हैं, आपस में ही भावताव कर लो, अगर आपस में नहीं मामला सेट होता फिर पुलिस को बुलाएंगे। बिल्कुल यही बात है, अगर इंसान गलत काम करने के बाद खुद को खुद सजा दे ले, अपना मुहासबा कर ले, इसको अरबी में कहते हैं तादीब, अदब सिखाए खुद को, तादीब कि मैंने ये गलत काम किया, अब मैं इसी आंख से कोई गलत सही चीज़ देखूंगी, जिस्म के जिस रूप से कोई गलत काम हो ना उसी से कोई अच्छा काम कराएं, जैसा गुना वैसी अपने आप को सजा दें, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, फरिश्तों को भी नहीं लिखने देता। हदीस में आता है कि 3 साल तक फरिश्ते गुना की चीज़ नहीं लिखते, इंतज़ार करते हैं, अगर इंसान उसके ऊपर तौबा कर ले तो फरिश्तों को लिखने की इजाज़त नहीं होती। बहरहाल, लेकिन इसके बाद अगर इंसान ऐसा ना करे, आदत ही बन गई, कानून तोड़ा कानून तोड़ा, फिर अल्लाह ताला सबसे पहले उस पर क्या करता है, छोटी छोटी तकलीफ़ें भेजता है, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई उसका दिल तोड़ गया, कोई कुछ कर दिया कि समझो होश करो। ये बिल्कुल ऐसे जैसे माँ गलत काम करता देखकर बच्चे को दूर से डांटती है, बस आओ ठीक हो जाओ, डांटूंगी मारूंगी पीछे हो जाओ, इस तरह की धमकी है। अगर कोई बंदा इन छोटी छोटी अजाब की झलकियों से इबरत हासिल कर ले तो उसको अल्लाह ताला फिर उतने भी माफ़ कर देते हैं। ये सेकंड स्टेप हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पे नहीं रुकते, कुछ नहीं होता ना, सब बीमार होते हैं, मैं भी हो गई, मौसम जो बदल रहा है वो जी, दुनिया में फिर नुकसान नफ़ा नुकसान तो होता है, कोई बात नहीं, शादियाँ होती हैं, टूट भी तो जाती हैं ना, तावील करता है ना जब बंदा दुनियावी तकलीफ़ों की, तो फिर उसका दिल सख्त होता है। इसके बाद फिर तीसरा स्टेप शुरू होता है, और वो क्या है कि अल्लाह ताला उस पर नेमतों की फरावानी कर देते हैं, खुशहाली, आसूदगी, दौलत, माल, खूबसूरती, फ़ैन, कोई उधर उनको बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, सारी दुनिया में पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत में फिर इंसान मगन हो जाता है, कहता देखो भला, शैतान कहता देखो अगर तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ होता तो भला इतना कुछ तुम्हें देता। इंसान जब गुनाह करके नहीं रुकता तो फिर अल्लाह उस पर नेमतें डाल देता है, दुनिया में मशहूर होता है, मतलब बड़ा स्टार बन गया, फेमस हो गया, लोग उसकी बातें करें तो लोग कहते देखो इतना खुशकिस्मत है, इसको दुनिया में क्या मिला। ये असल में अल्लाह की तरफ से पकड़ होती है, क्या बौर मगन हो जो, अब तुम्हारे दिल से ये ख्याल तक चला जाएगा कि अल्लाह तुम्हारा तुमसे नाराज़ है। और जब वो खूब अपने आप को उस मगन उस चीज़ पर मगन रखता है ना कि उसको वो भूल ही जाता है कि कभी कोई तकलीफ़ भी आई थी नहीं, और वो उस ढील को अल्लाह की मोहलत समझता है और अल्लाह की खुशी समझता है, और नतीजा क्या होता है कि एकदम फिर अल्लाह ताला पकड़ते हैं। फलम नसूमा जुक्की रुबी फतह न अलैहि मबवाब कुल्ल शैइन, जब वो हमारी नसीहत को भूल जाते हैं तो हम हर नेमत का दरवाज़ा उन पर खोल देते हैं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला अचानक पकड़ता है, फइज़ा हुम मुबलिसून, फिर वो मायूस होते हैं। तो ये अल्लाह का कानून है। हम सब अपने बारे में देखा करें, हम अल्लाह की कितनी बात मानते हैं और अल्लाह हमारी कितनी मानता है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ये ढील क्यों देता है, बिलाखिर फिर अल्लाह पकड़ लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, मैं इनको ट्रैप करता हूँ और एकदम एंड पे पकड़ता हूँ। इसकी वजह क्या है, 3 मुख्तलिफ वजूहात आपके सामने रखूँगी कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों करते हैं। नंबर एक, हुज्जत तमाम करने के लिए, अल्लाह ताला उनको एक रीज़न दे रहे हैं, हुज्जत यानी क़यामत के दिन वो ये ना कह दें कि अल्लाह ताला अगर तुम्हें मोहलत देता तो हम ठीक हो जाते, ठीक है, हुज्जत है एक, जिसको आप कह सकते हैं कि एक रीज़न उनके सामने आ जाती है। दूसरी वजह, अल्लाह ताला उनके गुनाहों की चेकलिस्ट को लंबा करना चाहते हैं, ये अल्लाह का इंतकाम है कि और कर ले और कर ले। इस बात को मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से अक्सर समझाती हूँ, आज फिर समझा देती हूँ कि पाकिस्तान में जब लोग किसी नई मासी को अपने घर में रखते हैं ना तो उसको आजमाने के लिए $5 का नोट डाल देते हैं समटाइम, कि देखते हैं भला ये ईमानदार है कि नहीं। अगर वो 5 रुपये उठा ले तो इनको पता चल जाता है कि इसने चोरी की है। एक सूरत है, फ़ौरन उसको कान से पकड़ा और कहा निकल जाओ तुम चोर हो और मैं तुम्हें नहीं रख सकती। हो सकता है वो रोए धोए नहीं बाजी मैंने देना था वापस, ये है वो है, लेकिन आपने उसको जल्दी में निकाल दिया। एक दूसरी सिचुएशन भी है, अकलमंद औरतें क्या करती हैं, वो 5 पे खामोश रहती हैं, अगले 1-2 दिन के बाद 10 रुपए का नोट डाल देती हैं, मासी वो भी ले जाती है, तीसरे दिन 20 का डाल देती हैं, और होते होते जब बात 100 पे आती है ना, फिर उस दिन वो उनको रंगे हाथों पकड़ती हैं ऑन द स्पॉट, और कान से पकड़ के कहती हैं ये 100 भी दो, कल वाले 20, 50 भी दो, 20 भी दो, और साथ ही पुलिस को कहेंगी कि या इसको कहेंगी कि आज के बाद यहाँ से ना मुझे दिखना चली जाओ। अब आप सोचिए वो मासी क्या सोचेगी, कितनी भोली मालकन मिली है, तनख्वाह तो शायद 200 रुपये दे रही है, लेकिन ऊपर से मैं हर महीने 200-300 और लेके जा रही हूँ। लेकिन क्या उस मासी का अपनी मालकन के बारे में ये गुमान ठीक था? नहीं, मासी ने उसको देखा, मालकन उसको चेक कर रही थी। यही अल्लाह की बात है, इन्ना बच्छ रब्बी कल शदीद, अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना रब्बा कल बिल मेरे साथ, सूरत मुतफ़िफ़ीन में आता है कि लोगों तुम्हारा रब तुम्हारी घात लगाए हुए, जैसे जानवर का शिकार करना होता है ना, जानवर बड़े ने वैसे शेर ने शिकार करना है छोटे जानवर का, पहले उसको घात लगाता है, कैसे पकड़ना है, किधर से गैंगल लेना है, और जो ही उसको गाफिल देखता है पकड़ लेता है। तो अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं, हम सब अपने आप को किसी बहुत बड़ी मुश्किल में डालने से पहले खुद को खुद पूछ लें कि क्या मेरे पास अल्लाह की दी हुई नेमतों के मुकाबिल निकियाँ मौजूद हैं। और जब बंदा अपने आप को खुद पकड़ लेता है तो कल फिर अल्लाह उसको नहीं पकड़ेगा कभी भी। वो एक शेर भी है इस पे कि ना जा उसके तहम्मुल पे, बड़ी दिलगीर है उसकी पकड़, अल्लाह जब पकड़ता है बंदे की चीखें निकल जाती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको तो खबर ही नहीं, लाइलमी में बोले बने बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि जिस तरह माँ इंतज़ार करती है कि वो बच्चा जो माँ से ही लड़के गया है उसको शायद तौफीक हो जाए घर आ जाए, तो अल्लाह ताला एकदम नहीं पकड़ता बल्कि मोहलत देता है ताकि इंसान पलट आए, तौबा कर ले, अल्लाह की तरफ आ जाए। तो हमारे लिए इसमें अमल की बात यही है कि हमेशा अपना इम्तिहान लेते रहें, इससे पहले कि अल्लाह ताला हमारा कोई मामला करे, हमें पकड़े, हम ख़ुद को पकड़ लें। हज़रत उमर का भी एक बड़ा खूबसूरत कौल है कि हासिबू कबल अन तुहासबू, कि अपना हिसाब खुद ले लिया करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आयत है अवलम यतफक्करू, और क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं। देखने में ये लफ्ज़ सवाल लग रहा है, क्वेश्चन है, लेकिन असल में शऊर को बेदार किया जा रहा है, प्रोवोकिंग स्टाइल है। अल्लाह सुबहाना तआला उनको एहसास दिला रहे हैं कि देखो तुमने अपने आप को इतना इस नबी के खिलाफ कर लिया, कोई बात तो तुम्हारी अक्ल में आती नहीं, हालांकि माँ भी साहिबिहिम मिन जिन्ना, इनके रफीक पर जुनून का कोई असर नहीं। यहाँ लिखिएगा भी साहिबिहिम में साहिब से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन्ना का लफ्ज़ जीम नून नून से है, उर्दू में हम लफ्ज़ बोलते हैं ना जुनून, फलां पे जिन का साया हो गया, इस ये वही लफ्ज़ है, जिन लफ्ज़ छुपी हुई चीज़ को कहते हैं। हुआ क्या, असल में इस आयत को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का में रहे, लोग आपकी बहुत इज्जत करते थे, आपको सादिक और अमीन कहते थे, आपकी बड़ी इज्जत थी, नबी सल्लम की अक्लमंदी, आपकी दानशमंदी बिल्कुल मुस्लिमा थी। खल्फुल फजूल का एक मौका आया जिस वक़्त नबी सल्लम को सालिस बनाया गया, यानी आपकी यंग एज जो थी नबूवत से पहले भी मक्का के लोगों में आप बहुत फेमस थे। हिजर असवद को नसब करने का मौका आया, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से उस मसले को हल कराया, लेकिन जो ही आप नबी बने, जो ही नबूवत आई, तो वो लोग जो सादिक और अमीन कहते थे आपको, उन्होंने आपको काहिन और मजनू कहना शुरू कर दिया। यहाँ अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, तुम इस नबी को, इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुनूनी कहते, कहते थे इसको जुनून हो गया। जुनून कैसे कहते थे, कहते थे इसके दिमाग में एक ही धूम सवार है, कुरान कुरान कुरान, दीन दीन दीन, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, सुबह को भी अल्लाह की बातें कर रहा है, शाम को भी अल्लाह की बातें कर रहा है, और पता नहीं जी ये तो इनको एक क्रेव हो गई है, और ये तो